एक निवेदन है साधकजनों, कल शाम इंदौर से पहले साधना सत्संग में काफी नाम कटे हैं, अतएव आप सबसे निवेदन है जो अभी तक साधना सत्संग हरिद्वार नहीं गए, जिन्हें गए हुए बहुत देर हो गई है या जिनके नाम दूसरे सत्संग में स्वीकार हुए हुए हैं और वह पहले में जाना चाहते हैं, ऐसे सभी साधकों से निवेदन है कि वे आज जाने से पहले अपने नाम श्रीमती रेणु अग्रवाल जी को लिखाते जाएं, ताकि जाने से पहले सभी कृति की सूची आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। मन के जीते जीत है मन के हरे हर, बुझा हुआ मन हो साधकजनों, न कोई सीरियल देखने को मन करता है, न भोजन ही अच्छा लगता है, न किसी से बातचीत करनी ही अच्छी लगती है, मानो ये मन कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। आप कहते हो आज कुछ मन बुझा बुझा है, क्या हुआ होगा इसको, आज किसी चीज में रुचि नहीं है, चेहरे पर उदासी है, भोजन भी कभी का लग रहा है, खाने को मन ही नहीं कर रहा। आदमी इतना सतर्क होता है लेकिन उस दिन हर दूसरी बात भूल जाता है। आप झट से कहते हो आज मन बुझा बुझा है, तो कितना महत्वपूर्ण है ये मन हमारे जीवन में, यही बंधन का कारण है, यही मोक्ष का साधन है। एक ताला, इसकी एक ही कुंजी, उससे ताला बंद भी हो जाता है और उससे ताला खुल भी जाता है, ऐसा है ये मन। बहुत महत्वपूर्ण दिव्य सज्जनों हमारे जीवन में इसका रोल। उस दिन चर्चा चल रही थी, मन को दर्पण कहा जाता है, बकरा कहा जाता है, घोड़ा कहा जाता है, अनेक सारे नाम इसे दिए जाते हैं सिर्फ इसे समझने के लिए, यह है नहीं है ऐसा, लेकिन सिर्फ इसे समझने के लिए हम तरह तरह के इसे नाम देते हैं। उस दिन चर्चा चल रही थी कि मन दर्पण है। चर्चा यूं चली थी, आज एक साधक संसारी विचारों से जकड़ा हुआ है, अपने गुरु महाराज से अपनी परेशानी व्यक्त करता है। हर साधक की परेशानी है, अब इस परेशानी को जान चुके हो या नहीं जान चुके, लेकिन परेशानी तो है, इट एग्जिस्ट वेरी मच विद अस, इसमें कोई शक नहीं है। कोई इन विचारों में खो जाता है तो एंजॉय करता है, कोई दुखी होता है, जिसका लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है वह अति दुखी होगा। ये क्या, किन विचारों की उदेड़ भुन में मैं फंसा हुआ हूं, ये क्यों मैं बार बार इनसे घिरता हूं, इनसे छूटूंगा जब तक नहीं तब तक मेरी अशांति का निराकरण नहीं हो सकेगा, तब मेरा मन तब तक ये चंचल ही रहेगा, ये भटकता ही रहेगा, ये मुझे भी भटकाता रहेगा, जन्म मरण के चक्कर में भी फंसा के रखेगा। अतएव एक समझदार साधक इन विचारों से बहुत दुखी है, होना भी चाहिए, तभी बात बनेगी, तभी आप अगला कदम उठा सकोगे, ताकि तभी आप ऊपर की एक सीढ़ी और चल सकोगे, नहीं तो वहीं के वहीं हो साधक जनों। इसमें बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं, आप जितना मर्जी जाप कर लो, यदि आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, अपने विचारों पर ब्रेक नहीं लगाई साधक जनों, तो आप बिल्कुल वहीं के वहीं रहोगे जहां से आपने अपनी साधना का आरंभ किया था। एक साधक ने अपनी पीड़ा गुरु महाराज से व्यक्त की है, कहावत, मेरे मित्र हैं एक अमुक स्थान पर, उनके पास जाओ, उनकी दिनचर्या देखना, हो सकता है तुम्हें कोई मार्ग मिल जाए, तुम्हें कोई रास्ता दिखाई दे जाए। ऐसा दुख चला गया है, जबकि क्या देखता है, वह मित्र कोई साधु नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति है, एक सराय में चौकीदार। मन सिर मुंडवाया नहीं है, वस्त्र बदले नहीं, बाल बढ़ाए हुए नहीं है, साधुता का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता, लेकिन देखने से ये साधक है। अतएव दृष्टि एक साधक की है, झट से देखा बहुत सरल है, किसी प्रकार का घमंड इत्यादि नहीं है, बहुत विनम्र है। प्रभावित हुआ, आज दिनचर्या देखी है, जितने भी सराय में बर्तन हैं उन्हें इकट्ठे किया, रात को सोने से पहले उन सब बर्तनों को एक एक करके मांजता है, देख ली वो भी सो गए होंगे, साधक भी सो गया, सुबह उनके साथ ही लगभग जग गया है, क्यों, दिनचर्या देखनी थी। क्या देखता है, जिन बर्तनों को रात को मांजा था उन्हीं बर्तनों को सुबह फिर धो रहा है। एक दिन व्यतीत हुआ, दो दिन व्यतीत हुए, तीन दिन व्यतीत हुए, देखा कि इनका रूटीन यही है, इनके दिनचर्या में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। अतएव बहुत निराश हो के ये व्यक्ति, इनके अंदर कोई ज्ञान का चिन्ह नहीं, कोई भक्ति का चिन्ह नहीं, इनसे मैं क्या सीखूंगा, क्या देखूंगा। अतएव बहुत निराश साधक वापस लौटा है, जाके गुरु महाराज को प्रणाम करता है, कहा महाराज किन के पास मुझे भेज दिया, दिन में ऐसा करते हैं, सुबह उठ के ऐसा करते हैं, बस इसके अतिरिक्त उनकी कोई दूसरी दिनचर्या, मैंने उनको जाप करते नहीं देखा, ध्यान में बैठे नहीं देखा, उन्हें स्वाध्याय करते नहीं देखा, अपना नाक मुंह सिकोड़ते नहीं देखा, मैंने ऐसा कुछ करते नहीं देखा उनको, आपने कैसे आदमी के पास मुझे भेज दिया। कहा बेटा तूने देखा जरूर है, लेकिन तूने समझा नहीं है, गुरुओं की सीधी सादी, संतों की सीधी सादी बातें, तूने देखा जरूर है लेकिन समझा नहीं है, आप समझाइए महाराज, वे क्या समझाना चाहते थे। कहते हैं बेटा वे ये समझाना चाहते हैं, हर साधु को रोज रात को अपना ये पात्र साफ करना चाहिए, मन टूटी पात्र, इसे रोज मांजना चाहिए, मांज के साफ करके रखें, रात्रि को जो इस पर धूल पड़ती है ना, रात्रि को जो इस पर धूल पड़ती है उसे सुबह उठ के तो फिर धो डाले, ये मन जितना साफ रहेगा बस उतनी शांति मिलेगी। रोगी मन ही भटकता है, रोगी व्यक्ति ही अपने रोग की चर्चा करेगा, जो स्वस्थ है उसे क्या चर्चा करनी है, दुखी ही चर्चा करेगा, जो सुखी है वह क्या चर्चा करेगा, उसे कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। रोगी है वह अपने रोग की चर्चा करेगा, पीड़ा की चर्चा करेगा, अपने इलाज की चर्चा करेगा, उस अस्पताल गया ये चर्चा करेगा, वो चर्चा करेगा, इसी को भटकना कहा जाता है। जो रोगी नहीं है, निरोग है, जो स्वस्थ है, जो सुखी है, वह किस बात की चर्चा करेगा, दुखी व्यक्ति है तो अपने दुख की चर्चा करेगा, अपनी समस्या का समाधान चाहेगा, कहां जाए इत्यादि इत्यादि, इसी को भटकना कहा जाता है। जिसका मन साधु निरोग हो गया है, जिसका मन स्वस्थ हो गया है, पवित्र हो गया है, वह भटकता नहीं है। पवित्र, निरोग, शुद्ध, ये सारे के सारे शब्द जो मन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इनका अभिप्राय साधु इतना ही है कि ये मन परमात्मा के साथ जुड़ चुका हुआ है, इसके अतिरिक्त इस संसार में कोई दूसरा साधन दिखाई नहीं देता इसके पवित्रीकरण का। इसे संसार से हटाना चाहते हो तो एक ही साधन है, इसे परमात्मा के साथ आपको लगाना होगा। ओ बुल्लिया रबदा की पावना है, एथों पुटना के अथे लावना है। बुल्ला शाह एक अनपढ़ महान संत क्या कहता है, ओ बुल्लिया रबदा की पावना है, एथों पुटना के अथे लावना है। यहां से उखाड़िएगा, उसे संसार से उखाड़िएगा और उसे परमात्मा के साथ जोड़ दीजिएगा, बस इतना ही कार्य करने वाला है। सुनने में बहुत आसान है, जीवन भी बीत जाए इन देवियों सज्जनों तो भी महंगे नहीं है। जिसने मन पर जीत कर ली उसने संसार जीत लिया, वह सम्राटों का सम्राट बन गया। जिसका मन पर नियंत्रण नहीं है वह दासों का दास होगा, अमीर होते हुए भी वह कंगाल होगा। बहुत सुखी आपको दिखाई देता हुआ भी अंदर से दुखी होगा, इसे बकरा भी कहा जाता है। बकरा एक ही आवाज निकालता है, मैं साधक चुनू। मन में और मैं में कोई अंतर नहीं है, मन में और माया में कोई अंतर नहीं है। इस सारे इसके सारे खेल वो खिलाड़ी मन के हैं। स्वामी जी महाराज ऐसा कहते हैं, ये सारे के सारे खेल सुख दुख जो भी कुछ जीवन में आता है ये सब इस मन के खेल हैं। आपको परमात्मा से जोड़ता है या परमात्मा से विमुख करता है ये सब मन का खेल है। आपको हर्षित करता है, आपको प्रसन्न करता है या आपको दुखी करता है, शोकित करता है, ये सब मन के खेल है और कुछ नहीं। जो कुछ इसे प्रिय लगता है वह सुखदायी है, जो कुछ इसे अप्रिय लगता है वह दुखदायी है। सब खेल इसी के हैं, किसी वस्तु में सुख या दुख नहीं है देवियों सज्जनों, सब इसी के खेल है। जिसको ये सुखद घोषित करता है उसे सुख मिलता है, जिसे ये दुखद घोषित करता है उसे दुख मिलता है। किसी वस्तु में किसी व्यक्ति में सुख दुख देने की सक्षमता नहीं है, ये निर्णय करने की भी सक्षमता किसी में नहीं है, ये सब कुछ मन ही करता है। इसलिए कितना महत्वपूर्ण है, एक चीज से बहुत डरता है और वह विवेक। विवेक कहां से मिलेगा? सत्संग से। इसलिए सत्संग में पहुंचने में मन जितनी बाधाएं प्रस्तुत करता है इतना कोई नहीं। क्यों? सत्संग में जाने से विवेक का उदय होगा और विवेक से ये बहुत घबराता है। आज एक राजा ने घोषणा कर दी, मैं अपनी पुत्री का विवाह एवं आधा राज्य उसे दूंगा जो मेरे इस बकरे को, एक बकरा था उसके पास, जो इस बकरे को संतुष्ट कर दे, तृप्त कर दे, मैं उसे अपनी पुत्री का हाथ दूंगा एवं आधा राज्य दूंगा। क्या करना है? आप इसका पेट भरो, इसे चारा दो, घास दो खाने को, पत्ती इत्यादि खाने को दो, मैं परीक्षा दूंगा। यदि पत्ती आगे करने से ये मुंह ना मारेगा तो मैं समझूंगा कि इसका पेट भर गया है। जो कोई भी इसका पेट भरेगा मैं उसे अपनी पुत्री एवं आधा राज्य दूंगा। बहुत बड़ा प्रलोभन है, कोई छोटा प्रलोभन नहीं है। एक राजकुमारी का मिल जाना और आधा राज्य मिल जाना और मामूली से काम, कोई काम, ये बहुत बड़ा काम नहीं है। अतएव एडी से सिर तक सब प्रयत्नरत है। आज एक संत महात्मा ने कहा, राजन मैं इस मुझे बकरा दीजिएगा, मैं इसे तृप्त करूंगा। आज उसे अपने कुटिया में ले गए, जाके उसके आगे घास रखा है खाने को, जैसे वे मुंह मारता है तो उसके मुख पर डंडा मारते हैं, हट जाता है, पुनः मुंह मारता है, पुनः डंडा मारते हैं। डंडे से डरता है तो अपना डंडा छुपा लेते हैं ताकि ये डंडा देखे ना, फिर मुंह मारता है तो फिर संत मुख पर डंडा मारते हैं। आज कुछ खाने को नहीं मिला, पेट खाली है, उसके बावजूद भी मुख नहीं मार रहा, डंडे का डर है। आज इस प्रकार से पक्का हो गया है तो राजा साहब के पास ले गए। राजा साहब ने परीक्षा ली, पास हो गए। ये विवेक का डंडा है साधकों, इससे मन बहुत डरता है, बहुत घबराता है। अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हो साधकों तो सत्संगति के माध्यम से इस विवेक को जागृत रखो, और कहीं से विवेक नहीं मिलेगा। तुलसीदास कहते हैं सत्संग जो है वह परमात्मा की कृपा से मिलता है और विवेक सत्संग से मिलता है, कहीं बाजार बिकने की चीज नहीं है। आखिर देवी सज्जनों ये मन चाहता क्या है? आज चर्चा शुरू कर लेते हैं, कल इसे जारी रखेंगे। आखिर ये मन चाहता क्या है, हम क्या समझते हैं कि ये मन क्या चाहता है। आज साथ शुरू एक बहुत बड़ा सेठ, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट एक संत महात्मा की शरण में गया है, उदास है, बहुत दिनों से उदास है, ऐसी उदासी अमित उदासी जाने ही रही, समझो मौत सिर पर मंडराती दिखाई दे रही है, जीवन लगभग खत्म होने को है, कुछ ही दिन बाकी रह गए होंगे जिंदगी के, ऐसी मुझे कोई चीज दिखाई नहीं देती जो मेरे पास नहीं, उसके बावजूद भी मेरी उदासी बनी हुई है, क्या कारण है? मेरी पत्नी है, परिवार है, अपार धन है, कोई सीमा नहीं, कितनी सारी इंडस्ट्रीज है और अभी खत्म नहीं, एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है, पद प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं, मंत्री महोदय इत्यादि इत्यादि बहुत वरिष्ठ लोग मुझे जानते हैं, यशमान की कोई कमी नहीं, पद प्रतिष्ठा की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, इसके बावजूद भी मेरी उदासी का क्या कारण है? आज ये कारण पूछने के लिए और समाधान के लिए बहुत उत्कट इच्छुक है ये लाला। किसी मित्र ने सुझाव दिया, लाला बहुत दिनों से बुझे बुझे दिखाई दे रहे हो, चेहरा उतरा हुआ है, चेहरे पर बिल्कुल किसी प्रकार की कभी रौनक दिखाई नहीं देती, हसमुख चेहरा था तेरा, क्या हो गया है तुम्हें? कहा मुझे भी पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन कुछ हुआ है, कुछ अंदर हो रहा है, इतना संतुष्ट करने के बावजूद भी, इतना सब कुछ इस मन को देने के बावजूद भी अभी भी ये कुछ और मांग रहा है, मेरी समझ से बाहर है। आज संत महात्मा के पास जाके यही निवेदन किया है, महात्मन मेरी अंतिम आस हो आप, मैं थक के हार के आया हूं, जीवन से थका हुआ व्यक्ति आज आपकी चरण शरण में आया है, मेहरबानी करके मेरी समस्या का समाधान कीजिएगा, मुझे ये बताइएगा मैंने अपनी जिंदगी में इस मन को क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया हुआ है, हर तरह की फैसिलिटीज है, इतनी बड़ी कोठी है, मर्सिडीज की गाड़ियां हैं, एक शेवरलेट, एक मर्सिडीज या और बड़ी बड़ी गाड़ियां इम्फाला इत्यादि ऐसे भी कही होंगी, किसी चीज की कमी नहीं, सुंदर संतान, वेल सेटल्ड, घर में किसी प्रकार की कमी नहीं, मेरी जानकारी बहुत है, मुझे इशारा करने की जरूरत है, हर एक का रुका काम बन जाता है, किसी को भी सिफारिश करता हूं मेरी मुझे ना नहीं होती, ये सब कुछ अपनी उपलब्धियां संत महात्मा को बता रहा है, इसके बावजूद भी महात्मन मेरा मन बहुत चंचल है, ये अभी तक तृप्त नहीं है, आखिर ये चाहता क्या है? आज साधक्षण यही समाप्त करते हैं, शुरू करते हैं संत महात्मा, लाला मन जिसे तू चंचल मान रहा है वह चंचल नहीं है, वह विवेकी है, वह नहीं चाहता जो तुम दे रहे हो, वह परमात्मा की भक्ति चाहता है, वह परमात्मा को चाहता है, वह भगवत प्रेम चाहता है, वह परम सुख चाहता है, और आप उसे संकटालय में भेज रहे हो जिसे संसार कहा जाता है, दुखालय में भेज रहे हो जिसे संसार कहा जाता है, इसलिए बेचारा बहुत दुखी है। कल करेंगे साधु जी ने इसकी चर्चा, आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा, धन्यवाद।